मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 15 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विक्की कुमार महतो साहिबगंज झारखंड से, पूजा सुनील कासरे नवी मुंबई महाराष्ट्र से और लोकेंद्र सिंह परिहार कानपुर उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं जो ईरान से लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा अमेरिका का, या यूं कह लीजिए कि जो खाड़ी क्षेत्र में फिर से एक तनाव की स्थिति पैदा होती जा रही है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। लेकिन पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को हम लोग देख लेते हैं। अखबारों में हालांकि इसे ज्यादा जगह नहीं दी गई है, लेकिन रेडियो न्यूज में आपने इस घटना के बारे में सुना, इस न्यूज के बारे में सुना होगा, घटना तो नहीं कहना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन जो हम कहते हैं, और जो अब कह लीजिए कि विश्व में पूरा जो व्यापार हो रहा है लिबरलाइजेशन के दौर में, उसका एक नियामक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका एक संचालक संस्थान है, उसका पूरा का पूरा संचालन करता है। और जब जैसे ही आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बनते हैं, आप यूं कह लीजिए कि विश्व व्यापार से संबंधित उसके जो नियम है उसे आप मानने लगते हैं, और भारत भी इसका सदस्य है। ऑलमोस्ट दुनिया के ज्यादातर देश अब इसके सदस्य हो चुके हैं। इनकी अभी एक मीटिंग हुई थी और इसमें जो विकासशील देश है, जो भारत भी विकासशील देश है, उसमें उन्होंने एक उस मीटिंग में एक डिमांड की है। मैं खासकर उस डिमांड की ही बात करने जा रहा हूं और रेडियो न्यूज में मेंशन भी किया हुआ था। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपने नियम कानून है, ठीक है। अब अगर कोई नियम कानून को तोड़ता है तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि आप न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी एक अपीली बकायदे विवाद को निपटाने के लिए एक इस तरह का संस्थान बकायदे है, WTO का, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसे थोड़ा सा समझ लीजिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में 7 मेंबर होते हैं और जब यहां कोई भी या कह लीजिए याचिका दायर की जाती है या कोई विवाद उठ गया, मान लीजिए कि भारत का किसी देश के साथ विवाद हो गया है और वो वहां जा रहा है, तो उस विवाद को जनरली 3 सदस्यों वाली बेंच ही देखता है और फिर उसका निपटारा करता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि 7 सदस्य इसमें रखे गए हैं, अब रिटायर होते होते केवल 3 बच गए हैं, तो अभी तक तो काम थोड़ा बहुत चल रहा है। एक जो सदस्य है वो दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं, 2 ही बच जाएंगे और नई नियुक्तियां हो नहीं रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इन नई नियुक्तियों के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अमेरिका है। देखिए, वैसे भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर जो अभी सबसे ज्यादा नियंत्रण है वो अमेरिका का ही है, इसीलिए कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है ना, ये बेसिकली वैश्वीकरण नहीं है बल्कि अमेरिकीकरण है। अमेरिका पूरे दुनिया को अपने हिसाब से नचा रहा है। अभी आप देख रहे हैं सब, ईरान के मामले में भी देखिए, चीन के मामले में भी देखिए, तो आप देख रहे हैं अमेरिका का दबदबा है। तो दोस्तों, इन्होंने मांग की है कि बकायदे यहां नियुक्तियां की जाएं और इस निकाय को एक्टिवेट किया जाए, अदरवाइज एक ऐसा समय आएगा जबकि इस निकाय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। और साथ ही साथ इन लोगों ने यह भी मांग की है कि जो WTO है वो कुछ ऐसे कानून बनाए जो विकासशील देश और जो कम विकसित देश हैं उनके फेवर में थोड़ा हो सके, ऐसा न हो कि जो अमीर देश हैं, जो धनी राष्ट्र हैं, वो लगातार विकासशील और अविकसित देशों पर आक्रमण करते रहे। एक छोटा सा रेफरेंस के लिए मुझे लगता है कि बात है, छोटी सी बात है जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान में एक एडिटोरियल कमेंट है, हालांकि इसकी चर्चा न्यूज में भी मुझे सुनने को नहीं मिली थी, चैनल्स को तो खैर अभी चुनाव की वजह से फुर्सत ही नहीं है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो सिक्किम हमारा राज्य है, वहां जो पर्वत की जो ऊंचाइयां हैं, वहां पर लगभग इस साल 500 याक उनकी मृत्यु हो गई। याक आपने नाम सुना होगा, अगर आपने देखा भी हो, मुझे तो देखने का मौका मिला, हिमालय के पूरे क्षेत्र में याक पशु पाए जाते हैं जो देखने में एक तरह से गाय भैंस जैसे दिखाई देंगे, तो इनसे दूध मिलता है, मांस मिलता है और साथ ही साथ ये गाड़ी भी खींचते हैं, हल भी जोतते हैं और इनकी आप सवारी भी कर सकते हैं, मतलब बहु उपयोगी पशु है। या हुआ ये कि वहां सिक्किम की जो घाटियां हैं मुगुथांग और युमथांग, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्री में इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये प्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन यहां इस पर बन सकता है। तो हुआ यह कि बहुत ज्यादा दिसंबर से वहां बर्फ पड़नी शुरू हुई, बहुत ज्यादा बर्फ गिरी। कहा जाता है कि इस बार बर्फ की बहुत मोटी परत जम गई। जब बर्फ की मोटी परत जम गई तो वहां के जो लोग रह रहे थे वो तो नीचे उतर करके आ गए, लेकिन अपने याक पशुओं को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। अब ये जो पशु हैं ये घास ढूंढ ढूंढ करके खाते थे, लेकिन बर्फ की परत इतनी मोटी हो गई है कि अब उनको घास मिल ही नहीं रही है और ऊपर से बर्फ गिर रही है। तो कहा जाता है कि भूख से ही इनकी मृत्यु हो गई, जिनकी संख्या लगभग 500 है। हालांकि 15-20 याक हर साल मर जाया करते थे, लेकिन इस बार बहुत बड़ी संख्या में याक की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों एक बड़ी घटना है। देखिए कभी कभी होता यह है कि घटना बड़ी होती है ध्यान में नहीं आती, लेकिन यदि किसी पेपर ने हिंदुस्तान जैसे अखबार ने अगर उस पर एडिटोरियल लिखा है तो फिर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और सिविल सर्विस के लिए हम इसी तरीके से अपने लिए टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में, हालांकि बहुत सी क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन उसमें से डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का जो लेख है उसकी विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं। चर्चा क्या मैं बल्कि आप लोगों को ही ये लेख प्रोवाइड कर रहा हूं, हिंदी में लिखा गया लेख है, आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसमें इन्होंने खासकर जो हमारी प्रशासनिक प्रणाली है उसमें क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, 3-4 बहुत अच्छे प्वाइंट सुझाए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन पॉइंट्स को नोट कर लें, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है और जो सिविल सर्विस टॉपिक है वो आप उठा करके देखिए तो आपके जो जनरल स्टडीज मेंस का सेकेंड पेपर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनसॉल्व पेपर में भी हर साल क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं और आप वही बनने जा रहे हैं तो आपको मालूम भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बस आप उनके कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि वो किस किस तरीके के बदलाव की बात कर रहे हैं। आज की करंट कंटेंट के तहत दोस्तों एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में यह छपा था, सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था में उम्मीद की एक कड़ी। खासकर इसमें आंध्र प्रदेश के एक सिस्टम को लिया गया है कि वहां कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश हो रही है, उसे उन्होंने कहा है उम्मीद की कड़ी। आप चाहें तो बस उसी पोर्शन को नोट कर लें ताकि अगर कहीं सुधार की बात आती है या इस पर निबंध ही लिखने के लिए आता है शिक्षा व्यवस्था में तो आप उसे मेंशन कर सके, तो इससे आपको एक बहुत ही नई बात कहने के लिए तथ्य मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है ईरान से जो लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है और ये कह लीजिए कि खाड़ी युद्ध की स्थिति बनने लगी है और पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है। अभी एक घटना घटी, इससे पहले की घटना आपको मालूम है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था व्यापार पर, यह कहते हुए कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान ने मना किया, अमेरिका ने नहीं माना। अब ईरान के साथ दुनिया के देशों ने अपने व्यापार बंद कर दिए हैं। ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक आधार क्या था? पेट्रोलियम पदार्थ। तो अब पेट्रोलियम पदार्थ ईरान से जा नहीं रहा है बाहर, तो ऐसी स्थिति में ईरान की भी आर्थिक हालत खराब होने लगी, यह घटना आपको मालूम है। इसी से जुड़ी हुई अगली घटना है, सीधे तो नहीं लेकिन उसे जोड़ा जा सकता है, और वो ये कि अभी अभी फारस की खाड़ी में दो देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, उसी के आसपास के फारस की खाड़ी में देखेगा, ईरान उरान ये सब थोड़े से आसपास के ही देश हैं, वहां जो दो तेल टैंकर, तेल से भरे हुए टैंकर्स जा रहे थे, मतलब आप कह लीजिए जहाज जा रहे थे, पानी के जहाज जा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया। बस ये घटना है। अब ये जो हमला हुआ है, अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि ये ईरान के इशारे पर हुआ है, ईरान ने ऐसा किया है क्योंकि उसका तेल का निर्यात बंद हो गया है, तो उस पर आरोप लगाया जा रहा है। ईरान मना कर रहा है कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब उसकी बात नहीं मानी जा रही है। इस बीच में ईरान ने एक और बात कही थी, ईरान में एक बंदरगाह है होर्मुज जलमार्ग है, कह लीजिए होर्मुज जलमार्ग, फुजैरा बंदरगाह के पास, चलिए नाम में के चक्कर में मत पड़िए, वहां से लगभग दुनिया में जो तेल और पेट्रोलियम पदार्थ गैस वगैरह भेजे जाते हैं उसका 1/3 हिस्सा हो जाता है। जलमार्ग से, एक तिहाई हिस्सा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर उस पर इस तरह से प्रतिबंध लगाए गए तो वो पूरे के पूरे इस रास्ते को बंद कर देगा, और अगर इस रास्ते को उसने बंद कर दिया तो सोचिए कि विश्व में तेल की आपूर्ति कितनी ज्यादा कम हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। तो इस स्थिति को देखते हुए जब उसने ये बात कही कि हॉर्मुज का जो जलमार्ग है उसको बंद कर देगा, तो अमेरिका ने क्या किया, दबाव बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में बकायदे अपने युद्धपोत रख दिए और साथ ही साथ बम वर्षक विमान भी तैनात कर दिए। अब जब आप युद्धपोत और विमान वहां बिठा देंगे तो क्या होगा, तनाव बढ़ जाएगा, और वही अभी स्थिति हो गई है। दोस्तों, अब भारत से इसका क्या संबंध है, आइए हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारत से जोड़कर देखना ही पड़ता है। पहली बात, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईरान से हम लगभग 10-12% अपने पेट्रोलियम पदार्थ की जरूरत का आयात करते थे। अब हमारे लिए संकट पैदा हो गया, क्योंकि ईरान से हमें कुछ समय पेमेंट की छूट भी मिलती थी, हमारे नजदीक भी था, तो वो पेट्रोलियम हमें सस्ता पड़ता था, वो हमारा बंद हो गया है। दूसरा यह कि अगर ये तनाव बढ़ा और युद्ध जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि इससे पहले दुनिया ने दो खाड़ी युद्ध देख चुके हैं। पहला खाड़ी युद्ध तो हुआ था बकायदे आपके अमेरिका के साथ में, फिर इराक और ईरान के साथ में अब फिर से अगर ऐसी स्थिति हुई तो खाड़ी देशों में भारत के बहुत से लोग रह रहे हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, उनका क्या होगा, उन्हें छोड़ छोड़ करके हो सकता है कि भारत आना पड़े। और अगर भारत आना पड़ेगा तो आप देखिए दो तरफा नुकसान होगा, पहला तो यह है कि उनको हम यहां एकोमोडेट कैसे करेंगे, दूसरा यह है कि वहां से कमाई करके जो इतनी हमारे लिए वो करेंसी फॉरेन करेंसी भेजते थे वो भी हमारा गायब हो जाएगा। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर तेल का संकट इसी तरह से पूरी दुनिया में चलता रहा और ये युद्ध छिड़ गया तो विश्व व्यापार की मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इसका दुष्प्रभाव सीधे सीधे भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को महसूस करने लगे हैं कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो कहीं न कहीं सुस्त पड़ती जा रही है। तो मित्रों, ये थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, और इससे रिलेटेड आज काफी एडिटोरियल कमेंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है दुनिया के लिए, तो लगभग अधिकांश अखबारों ने इस पर अपने एडिटोरियल कमेंट्स लिखे हैं, और आगे चल करके मुझे लगता है कि फुल फ्लेज्ड आर्टिकल भी डेफिनेटली पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, मोहित कुमार, श्वेताराज चंपारण बिहार से, लक्ष्मी सिंह कोलकाता से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, और शिवा चंचल, आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, नमस्कार।